శాంతి. ఓం శాంతి. ఆజ్ బాబాని పుష్యారత్ కే బచ్చో కో బహుత్ ధ్యాన్ సే ఆర్ బహుత్ హి హల్కే రీతి సే కభీ కభీ బచ్చే కై బాతో మే భారీ హో జాతే హై తో బాబా నే ఉన్కో హల్కా కియా హై. బచ్చే బాబా కో కేతే బాబా మాయా కే బహుత్ తుఫాన్ ఆతే హై ఆర్ బాబా కేతే బచ్చే మాయా కే తుఫానో సే డర్నా నహీ. బచ్చే బాబా కో క్యా బోల్తే హై బాబా, జ్ఞాన సే పహలే తో కోయి ఐసీ బాతే నహీ ఆతీ థీ, సంకల్ప మే ఆతే హై, కై తరహ కే మాయా కే తుఫాన్ ఆతే హై. బాబా నే కహా, జ్ఞాన సే పహలే తుమ్ కోయి యుద్ధ కే మైదాన్ మే థోడీ థే, అభీ తుమ్ యుద్ధ కే మైదాన్ మే హో. ఫిర్ బాబా నే బచ్చో కో ఓర్ హల్కా కర్నే కే లియే ఏక్ ఎగ్జాంపుల్ దియా. బాబా నే కహా కీ మహావీర్ కే ఆగే మాయా మహావీర్ హోకే ఆతీ హై. బాబా నే ఫిర్ సాథ్ మే ఏక్ ఓర్ బాత్ కహ దీ కీ సబ్సే యాదా తుఫాన్ కిస్కో ఆనే చాహియే. వాస్తవ మే బ్రహ్మా బాబా కో కోయి తుఫాన్ నహీ ఆతే థే, లేకిన్ బాబా నే బచ్చో కో ఖుష్ కర్నే కే లియే, హల్కా కర్నే కే లియే బాబా నే కహా, సబ్సే యాదా తుఫాన్ తో బాప్ కే పాస్ ఆతే హై, బాబా కే పాస్ ఆతే హై, తో అనుభవ కే ఆధార్ సే బచ్చో కో సమ్జాతే. లేకిన్ బాబా బచ్చో కో సిర్ఫ్ ఉమంగ్ ఉత్సాహ దిలానే కే లియే, బచ్చో కో హల్కా కర్నే కే లియే బాబా ఐసే యుక్తి బచ్చో కో బతాతే హై. ఫిర్ బాబా నే కహా కి బచ్చో కో బహుత్ ఖుషీ మే రహనా చాహియే. ఖుషీ మే క్యో నహీ రహతే హై, ఉస్కా కారణ క్యా హై కి దేహ అభిమాన్ మే హై. ఖుషీ మే రహనే కి ఏక్ యుక్తి హై దేహ అభిమాని హోకర్ రహనా. తో జబ్ ఇస్ స్థితి మే రహేంగే తో ఖుషీ మే రోమాంచ్ భీ ఖడే హో జాయేంగే. సాథ్ సాథ్ బాబా నే ఇస్ కలియుగ దునియా కి హాలత్ క్యా హై, భవిష్య సత్యుగ దునియా మే క్యా హోగా, కిస్ తరహ సే బడే బడే మహల్ హోంగే, ఆర్ అభీ కి దునియా మే దేఖో ఖానే కో నహీ మిల్తా హై, వహాన్ తో అథా అనాజ్ హోతా హై. తభీ హమ్ సునతే హై ప్యారే బాబా కే మహావాక్య. ఆజ్ కి తారీఖ హై 11 నవంబర్ 2025. మురళీ కా ముఖ్య హెడింగ్, మిఠే బచ్చే తుమ్ దిల్ సే బాబా బాబా కహో తో ఖుషీ మే రోమాంచ్ ఖడే హో జాయేంగే. ఖుషీ మే రహో తుమ్ మాయా జీత్ బన్ జాయేంగే. మిఠే బచ్చే తుమ్ దిల్ సే బాబా బాబా కహో తో ఖుషీ మే రోమాంచ్ ఖడే హో జాయేంగే. ఖుషీ మే రహో తో మాయా జీత్ బన్ జాయేంగే. ఆజ్ కా ప్రశ్న హై, బచ్చో కో కిస్ ఏక్ బాత్ మే మెహనత్ లగ్తీ హై, లేకిన్ ఖుషీ ఔర్ యాద్ కా వహీ ఆధార్ హై. బచ్చో కో కిస్ ఏక్ బాత్ మే మెహనత్ లగ్తీ హై, లేకిన్ ఖుషీ ఔర్ యాద్ కా ఏక్ హీ ఆధార్ హై. ఉస్కా ఉత్తర్ హై, ఆత్మ అభిమానీ బందే మే హీ మెహనత్ లగ్తీ హై. ఆత్మ అభిమానీ బందే మే హీ మెహనత్ లగ్తీ హై, లేకిన్ ఇసీ సే హీ ఖుషీ కా పారా చఢతా హై. మీఠా బాబా యాద్ ఆతా హై, మాయా తుమే దేహీ అభిమాన్ మే లాతీ రహేగీ, రుస్తమ్ సే రుస్తమ్ హోకర్ లడేగీ, ఇస్మే మూజనా నహీ హై. బాబా కేతీ బచ్చే మాయా కే తుఫానో సే డరో మత్, సిర్ఫ్ కర్మ బలం సే కోయి భీ వికర్మ नहीं करो। बाबा हमेशा कहते थे कि युद्ध के मैदान में है, कई प्रकार की समस्या आएंगी, माया के तूफान आएंगे, लेकिन बाबा कहते कर्म से नहीं करना, आएंगे तो हिम्मत से उसको दूर करना है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं व शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे, तीन बातें, समझा भी रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप ही सदैव देही अभिमानी है, वह है निराकार, वह देह तो लेता ही नहीं है, ना देह है ना देह से जन्म लेता है, वह तो है निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनः जन्म में भी नहीं आते, ना देह लेंगे ना पुनर्जन्म में आएंगे, पुनर्जन्म में भी नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझ लेंगे, मैं हूँ परम पिता, परम पिता को देह होती नहीं, उनको देह अभिमानी भी नहीं कहेंगे, उनको देह है ही नहीं बाबा को, और उनको कोई देह अभिमानी का अभ्यास भी नहीं करना, बाबा तो सदैव उसी कॉन्शियस में है ना, तो बाबा कहते हैं उनको देह अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं मुझे अपने देह नहीं, बाबा को अपनी देह नहीं है, बाबा कहते तुमको अपनी देह मिलती है, बाप कहते हैं मुझे अपने देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है, अभी भी देह है और जितने जन्म लिए उतना देह लेते रहते हैं, तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो उसका रास्ता क्या है, युक्ति क्या है, अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है ही नहीं। बाप कहते हैं अगर विश्व का मालिक बनना है तो क्या करना है, देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देही अभिमान को छोड़, मेरे समान बनो, सभी बुद्धि में रहे, हम आत्मा है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप तो निराकार है परंतु पढ़ाए कैसे, इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बाबा कहते बाबा को ये तन का आधार लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं बाप तो नहीं कर है परंतु हमको पढ़ाए कैसे, इसलिए बाबा इस तन से आकर हमको पढ़ाते हैं, गौमुख दिखाते हैं ना, यहाँ गौमुख बना हुआ है माउंट आबू में, 700 से ऊपर स्टेप्स हैं नीचे जाने के लिए, पहले तो बहुत रफ थी और अभी तो थोड़ी उसको ठीक ठाक किया, 700 स्टेप्स हैं और फिर चढ़ने के लिए भी 700 से ज्यादा है, कई बार कहीं चले जाते हैं खुशी खुशी चले तो जाते हैं लेकिन बाद में आते दो तीन दिन तक ये शरीर को रेस्ट देते रहते। अब बाबा कहते बना तो दिया है लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, तो बाबा कहते हैं गौ मुख दिखाती है, अब गौ के मुख से गंगा निकल नहीं सकती है, माता को भी गौ माता कहा जाता, गाय को भी भक्ति में गौ माता कहती और माता को भी, जो माताएं बहुत एकदम निर्माण चेत होती है बहुत प्यार से बाबा को या उनको भी गौ कहा जाता है, तुम सब हो गौ। अब कौन है भाई बहने, कौन है तुम सब, गौ हो, क्योंकि तुम सब को ज्ञान सुनाते हो, कैसे हो गऊ, ये ब्रह्म क्या है? अब इसको गऊ कहेंगे या नहीं? ब्रह्म को बाबा कहते गऊ कहेंगे या नहीं? बाबा कहते ब्रह्म जो है गऊ नहीं है, ये ब्रह्म तो गऊ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाबा को भी शिव बाबा ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा बाबा भी जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं शिव बाबा सुनते हैं, तो कोई डायरेक्ट वो मुख द्वारा ज्ञान नहीं सुनते हैं, बाबा ने ये बोला इसलिए उनको बाबा कहते गौ मुख नहीं कहेंगे, तुम हो गौ मुख क्योंकि तुम ज्ञान सुनाने वाले हो। बाबा कहते हैं बाप के गौ तो है नहीं, बैल पर ही सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव तो है ऊंचे से ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन वासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना। शुरू में क्या था, ज्ञान सुनाते थे तो कई बहस करते थे, बाबा कहते थे जो रियल बात है वो आप सुना रहे हो, विचार सागर मंथन करो, किस युक्ति से बताना है और फिर उनको समझाना भी है, फिर समझाना भी है। तो बच्चों को ये खुशी है, तो कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट्स है। किस बात की खुशी है कि हम ईश्वर के स्टूडेंट्स है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। एक तो ईश्वर के स्टूडेंट्स और दूसरा नशा क्या है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, भगवान वाच्य ही है। हे बच्चे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ और राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। वे कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाती हो, बुद्धि नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते, कहीं भी रहो सेंटर पर जाओ, सेवा करो, कारोबार करो, बाबा कहते बुद्धि में क्या रहता बच्चों को कि बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। शुरू में ऐसा था, अभी तो उसी समय की आज की मुरली चारों तरफ सेंटर पर जाती, उस समय तो आज की मुरली नहीं होती थी, सेंटर्स पर कहीं पर 10 दिन पहले वाली, कहीं 15 दिन पहले वाली, कभी कभी पोस्ट नहीं होती तो पुरानी मुरली पढ़ते थे। तो बाबा कहते फिर भी सेंटर्स पर जाते मुरली सुनते समय हमेशा क्या करो, बाबा बाबा करते रहो। ये भी तुम्हारी यात्रा हो, योग अक्षर शोभता नहीं है, मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है, कहाँ जाना, अपने घर, पैदल नहीं करना है, एक स्थान पर बैठ के बाबा को याद करना। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है, बाबा आया हुआ है किसी हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तो खुद भी कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे, भक्ति में गाते रहना पतित हैं, पतित पावन आओ आकर के हमको पावन बनाओ, तो बाबा कहते पतित थोड़ी मुक्ति को पाते हैं, तुम खुद भी गाते हो कि हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माएं तू पतित बने हो, मैं शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं, आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते, सोचते गंगा में स्नान करेंगे पावन बन जाएंगे। पहले जमाने की गंगा और अभी की गंगा में देखते हैं कितना अंतर है, पानी भी ऐसा होते फिर आकर के दोबारा से फ्रेश होते हैं। तो बाबा वो तो बताते हो शरीर को ही पति समझते हैं, लेकिन पति तो आत्मा बनती है ना, मैं तो आत्मा को निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात ही है आत्मा की, कहते भी है ना पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ये अक्षर अच्छी रीति याद करो, समझना भी है और समझाना भी है, तुमको ही भाषण आदि करना। शिव बाबा कहते मैं थोड़ी जाके भाषण करूंगा, ये ब्रह्मा बाबा थोड़ी जाकर के भाषण करेगा। भाषण किसको करना है? तुम बच्चों को करना है, तो तुमको करना है तो उसके लिए विचार सर मंथन भी करना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बात तो गांव गांव में गली गली में तो नहीं जाएंगे, शिव बाबा थोड़ी जाएंगे गांव गांव में गली गली में। तुम घर घर में ये चित्र रख दो, 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहती है सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है, पवित्र बनो बिगर तुम घर जाएंगे नहीं। जब तक पावन नहीं बनेंगे, चाहे तो याद की यात्रा से चाहे फिर सजाओं से बने, तो बाबा कितनी पवित्र बनने बिगर घर नहीं जाएंगे। यही फूलने लगा रहे कौन सा, कि बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते है, कोई ऐसा कोई बाबा कहते ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसी जरा सी बात पे फिर बाबा को लिखते हैं। बाबा कई बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, वर्षा में भी बहुत खराब ख्याल आते हैं, आगे नहीं आते थे, अब ज्ञान में आए। दुनिया में कई प्रकार की घटनाएं घटती है, सोचेंगे ये हुआ वो हुआ, पता ही नहीं पड़ता। उस समय नहीं कहेंगे कि हमने भक्ति किया इसलिए ऐसा हो, यहाँ ज्ञान में आते छोटी छोटी बात आती है तो क्या करेंगे, आगे तो कुछ नहीं था अभी क्यों हुआ। अरे कई जन्मों का हिसाब किताब उसको पूरा करना ना, तो बाबा को लिखते हैं आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम ये ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे, आगे तुम कोई ऐसे नहीं कोई पुरुषार्थ नहीं करते थे, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे। अभी तुमको बाप के याद में रहे माया पर जीत पानी है, ये घड़ी घड़ी याद करो, ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। पहले जमाने में माताएं क्या करती थी, कोई भी काम करना होता था ना वो गांठ बांध लेती, चुन्नी का पल्ला या साड़ी के पल्ले को गांठ बांध लेती थी, एक गांठ दो गांठ बांधते थे, पुरुष लोग गांठ नहीं बांधते थे। तो बाबा भी बताते गांठ बांधना मीन्स पक्का करो, गांठ को बांधते हैं तो पक्का करने के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माता गांठ बांध लेती है, पुरुष लोग फिर क्या करते थे, अब वो तो डायरी पेन लेंगे उस पर या किसी चीज पे लिख लेंगे, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो ये बैज अच्छी निशानी, बैज को देखो और बाबा को याद करो, तुम्हारा तो ये बैज अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, अभी आप क्या कहलाए जाएंगे, वो तो इंग्लैंड का एक ही है, तो आप प्रिंस प्रिंसेस बनते तो आप क्या कहलाए जाएंगे, प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ हेवन, हेवन में जाके बनते हैं ना। तो बाबा कहते जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता, वह हद की बात है, श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था। तो बाबा कहते हैं तो बाकी वह हद की बात है, जैसे तो बाबा बता रहे हैं जैसे कहा जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, वह हद की बात है। राधा कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस एंड प्रिंसेस थे ना, इसलिए उनको सभी बहुत प्यार करते हैं, श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते। बाबा कहते नहीं तो करना तो दोनों को चाहिए, करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधा को प्यार करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता, अभी तो दोनों पर बराबर रहता है, पहले जमाने में बच्चे पर ज्यादा होता था, बच्ची पर कम होता था, द्वापर से तो क्या हालत हो गई, बच्चा हुआ तो कुछ बहुत कुछ करेंगे, बच्ची होगी तो लास्ट में कलयुग में आने पर तो बच्ची पर बहुत ही वो इस तरह से दुख की फीलिंग प्रकट करते थे। और अभी आज के टाइम में जब से बाबा ने माताओं कन्या को उठाया है तो बच्चों को दोनों को बराबर रखते हैं, बच्चियों पर भी उतना ही प्यार रखते हैं, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का पति पर प्यार रहता है, पति के लिए कहती है ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, स्त्री को कहेगी पति तुम्हारा गुरु है ईश्वर है इसकी सब आज्ञा मानो, लेकिन स्त्री के लिए नहीं कहेंगे, स्त्री के लिए नहीं कहेंगे। सत्युग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, अम्बा का कितना रिकॉर्ड रखते हैं, यह अम्बा का मंदिर है ना अम्बा जी में, उसका इतना मेला लगता है, इतना मेला लगता है, कितने लाखों लोग आते करोड़ों आते रहते हैं, अम्बा का कितना रिकॉर्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, अजमेर में एक मंदिर, अजमेर के पास ही एक जगह पुष्कर, वहां पर ब्रह्मा का मंदिर है, चार भुजा चार मुख वाला दिखाते, इतने लोग जाते केवल वहां पर है, और एक गुजरात में है, ज्यादा नहीं है, लेकिन थाईलैंड में भी ब्रह्मा को बहुत मानते, वहां पर ब्रह्मा के मंदिर जगह जगह पर है तो वहां मानते, लेकिन इतना तो नहीं जितना अम्बा को देवियों को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में जहाँ मेले आदि लगते हैं, अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है, वास्तव में ये सब मेले हैं मेला बनाने के, मेले के स्थान पर जाओ जाकर देखो, पुष्कर में चले जाओ चारों तरफ रेत ही रेत है, चारों तरफ कुछ न कुछ इस तरह से है। आर यू गेटिंग ट्रांसलेशन? नो, ट्रांसलेट कौन कर रहा है, प्रॉपर नहीं आ रही है, इज इट ऑल राइट? वॉल्यूम बहुत स्लो है, वॉल्यूम बढ़ाओ ट्रांसलेशन का। ओके, आर यू लिसनिंग? ऑल राइट, इफ इट इज ऑल राइट रेज योर हैंड। ओके, ट्रांसलेशन वाले थोड़ा ध्यान दो है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं, अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है, वास्तव में ये सब मेले हैं मेला बनाने के लिए, तुम्हारा ये मंदिर है स्वच्छ बनने के लिए, तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना, स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते, गीता में भी है भगवानो वाच्य मन भव, आदि व अंत में ये अक्षर है, शुरू में यही है कि मन मना भव, अंत में भी क्या है बाबा की याद में ही अपनी संपूर्ण स्थिति को पाना है। तो बाबा कहते आदि व अंत में ये अक्षर है, तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू किया, जिन्होंने भक्ति किया हाथ खड़ा करो, जिन्होंने बहुत भक्ति किया हाथ खड़ा करो, माताएं तो बहुत हाथ खड़ा करेंगे, भाई भी करेंगे, लेकिन विदेशी जिन्होंने भक्ति किया थोड़ी बहुत किया है ना, थोड़ी बहुत करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों ने और शुरू में बहुत भक्ति शुरू की है, तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है, सतो प्रधान भक्ति फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है, अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी भक्ति करते हैं, ये सब है अनश्रद्धा, कहाँ कहाँ करते रहेंगे क्या क्या करते रहेंगे, बाबा कहते भावना लेकिन प्राप्ति तो नहीं होती ना, ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचयिता मैं ही हूँ। अगर मैं दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, अब बाबा क्या बता रहे हैं, इस उल्टे वृक्ष का रचयिता बाबा है, अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सत्संग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अब बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए, बाबा के बच्चे देवी देवता धर्म वाले वो कहाँ कहाँ मिक्स हो गए, कई स्थानों पर चले गए और कोई धर्मों में चले गए। धीरे धीरे जो पत्ते हैं वो वापस फिर से अपने ही ओरिजिनल धर्म में आ रहे हैं। हिंदुस्तान का बाबा कहते बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। यहाँ पर भी जब जनगणना करने के लिए आते ना, उस समय क्या करते हैं, उनके पास एक ही कॉलम होता है। उनको कौन है कि हम देवता धर्म के, कहते नहीं नहीं ठीक कह रही है। फिर उनको कौन है, हम ब्राह्मण धर्म के, नहीं ब्राह्मण देवता सब हिंदू धर्म के कॉलम में आएगा। तो अभी वो एक ही कॉलम लिखते, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में ये देवी देवता धर्म के थे। तो बाबा कहते हैं नए पत्ते निकलते, अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जो बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम है ही भारत। नाम भारत था, लेकिन परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि जब दूसरे फॉरेनर्स आए तो सिंधु घाटी पर रहते थे, उनको स बोलना नहीं आता, तो स को हिंदू कहना शुरू कर दिया। हिंदू हिंदू करते करते जाके हिंदुस्तान और हिंदू धर्म बना दिया। तो बाबा कहते हैं हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवता ही रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, किसी भी देश में चले जाओ धर्म का नाम नहीं बदलता है, और किसी देश का नाम नहीं बदलता। इनका ही नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देती है। वो भी लोग ऐसे नहीं देंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्ध ही कहेंगे। तुम्हारे में भी कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं वह तो अपने धर्म को बौद्ध ही कहेंगे। तुम्हारे में भी कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहेंगे तो बाबा के तुम्हें बोलो ये धर्म कब और किसने स्थापन किया। कोई कहे हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन है तो वहाँ के ना, लेकिन कब और किसने स्थापन किया, इससे हम दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कलप की आयु भी लंबी चोरी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए। उस समय कहेंगे कि पता नहीं कब था लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो भी उनको पता नहीं। तो बाबा कहते दूसरी बात क्या है कि लक्ष्मी नारायण के राज्य को बहुत दूर ले गए, इसलिए घोर अंधेरा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उसे जैसे एक लोटा लेते। अब बाबा बच्चों की अवस्था को बता रहे, कई बच्चे ऐसे हैं पूरा ज्ञान सुनेंगे, कई आएंगे थोड़ा सा सुनेंगे। तो थोड़ा सा सुनना उसको बाबा कहते हैं उसे जैसे कि एक लोटा लेते हैं, सिर्फ किसको ये सुनाओ, शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये जैसे कि चुन्नू पानी है, चुन्नू पानी समझते ना क्या होता है, पानी लेते हैं हाथ में ऐसा थोड़ा सा, ऐसे लेते हैं एकदम थोड़ा सा पानी, हाथ में कितना पानी आएगा, इतना पानी आएगा, गिलास में तो कम से कम आधा गिलास पूरा गिलास आएगा, हाथ में पानी लेंगे तो उसको कहते चुन्नू। तो चुन्नू में थोड़ा सा पानी, अगर बाबा को याद भी करते हैं तो भी कम से कम उस चुन्नू पानी से भी आत्मा का तो कल्याण हो जाता है। बाबा कहते कम से कम ये तो करो, ये तो जैसे चुन्नू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर कर ले जाते, गंगा में जाते थे, कई स्नान करते थे, कोई उस समय भक्ति में गंगा जल का भर के भी ले आते थे, घर में गंगा जल को भी रखते थे। तो बाबा कहते कोई तो घड़ा भर के ले आते, कोई छोटी छोटी लोटी ले आते, जाएंगे कोई लोटी ले आएंगे, कोई ज्यादा ले आएंगे, कोई थोड़ा सा पानी लाते हैं, कोई तो छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते रहते हैं। विलायत में भी पहले जमाने में फॉरेन में जो पक्के वैष्णव होते थे वो जाते थे, स्टीमर में जाते थे, प्लेन तो थे ही नहीं, स्टीमर में जाते थे, गंगा जल के बड़े बड़े मटके भर के ले जाते थे और वहीं पर वो यही पीते थे, और जब गंगा जल खत्म हो जाता था फिर और मंगाते रहते थे। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर लेकर जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब ये तो सारा ज्ञान, ये सारा पानी, अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से पानी गिराते, गंगा में भी पानी कहाँ से आया, ऊपर से आता है, पहाड़ों से आता है तो गंगा में गिरता है ना, तो अब ऊपर से पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक बनते रहते, पहले तो विदेशों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती थी, अब तो भारत में भी 100-100 मंजिल तक मकान बनाते रहते, 50 मंजिल, कितने बड़े बड़े छोटे छोटे जगह है उस पर इतनी बड़ी मंजिल बनाते हैं। आजकल तो देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक बनाते हैं, सचमुच में ऐसे नहीं होगा, वहां पर कैसे होंगे, डबल विदेशी बताओ आपके महल कैसे होंगे, सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी बोलो, 3-story 4-story, व्हाट काइंड ऑफ पैलेस दिस यू विल हैव, डबल फर्नेस रेशियो है, रेशियो है, वहां पर आपके पैलेसेस कैसे होंगे, पैलेसेस मीन्स ऑन द ग्राउंड लेवल, नॉट सिंगल स्टोरी नॉट डबल स्टोरी है। तो बाबा कहते हैं सचिन में ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है कि बात मत पूछ, जितना बनाना चाहो बनाते जाओ, जितना रखना चाहो रखने जाओ, जितने गार्डन बनाने बनाते जाओ, वहां तो तुमको इतनी जमीन मिलती है कि बात मत पूछो, यहाँ रहने के लिए तो जमीन नहीं है, तब तो इतने मंजिल बनाते हैं, वहां अनाज आदि भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है वह जला देते, अभी तो नहीं है पहले बहुत था, और उस समय क्या था, लाल रंग की गेहूं होती थी और कई देश तो लेते थे और कोई देश नहीं लेते थे, अब नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, उसको जला देंगे। तो बाबा कहते उस समय की बात है, और अभी तो भारत के अंदर इतना है कि वो तो विदेशों में भी भेजता रहता है। तो बाबा बता रहे अमेरिका में बहुत अनाज होता है वह जला देते हैं, ये है ही मृत्यु लोक और वह है अमर लोक, आजा कलप तू सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा है ना, एक कथा क्या है पता होगा आपको, कि एक व्यक्ति जब जा रहा है, धर्मराज ने उसको पूछा कि तुमको पहले कहाँ जाना है, सुख में जाना है या दुख में, तो बोले नहीं मेरे को सुख में जाना है, सुख में जाएंगे तो दुख तो आ नहीं सकता, दुख की बात तो बाद में देखी जाएगी। तो बाबा कहती है तो इस पर एक कथा भी है ना, ये है बेहद की बात, बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ भी पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। पहले ग्रंथ छोटा था, अभी तो इतना बड़ा है। उसके लिए भी एक बहुत सुंदर तख्त बनाते हैं, ऐसे गीता का भी है, बहुत बड़ा बनाते जाते हैं। अब तो कितना बड़ा कर दिया, शिव बाबा कितना छोटा है, उनके लिए कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए, अब बुद्ध के चित्र भी इतने लंबे लंबे बनाते हैं। वो इतना लंबा तो था नहीं, पांडव भी कोई इतने लंबे नहीं थे, ये थे उनकी महानता की यादगार बनाई, उनकी विशेषताओं की बनाई। लेकिन बाबा के तो चित्र बना दिए, लेकिन वास्तव में वो इतने बड़े या लंबे नहीं थे। तो बाबा कहते हैं ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध का चित्र, पांडवों के चित्र भी बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं है। तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। साकार में बाबा हमेशा कहते कुछ भी नहीं करो, घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र रख दो, खुद भी देखेंगे तो एम एन ऑब्जेक्ट भी याद रहेगा और जो आएंगे वो देख करके भी खुश होंगे। हमें याद है कि जब ये लक्ष्मी नारायण का चित्र रखते थे, बाहर वाले अज्ञानी भी आकर के उसको देख के खुश होते, उसके आगे नमस्तक नमन करते थे और फिर मांगते थे ये चित्र हमको दो, ये चित्र हमको दो। अभी भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत पसंद करते हैं और लेकर के जाते हैं, श्री कृष्ण के चित्र को भी पसंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये एम एन ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए, हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं, बाबा क्या कहते हैं, जो रोते हैं वो क्या करते, कुछ न कुछ अपने जीवन में खो देते हैं, उनका सब कुछ जोड़ेंगे तो जो लिया है खुशी वो सब खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते जो रोते हैं वो खोते हैं, खोते में सब खत्म हो जाता है, जो कुछ पाया वो खत्म हुआ। जय अभिमान में आ जाते हैं, तुम बच्चों को तो आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है, आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। तो बाबा कहते मीठा बाबा याद आता है, क्या बात है, देही अभिमानी बनने से, आत्म अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है और मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम सूरज का वर्षा ले रहे, बाबा भी याद आएगा और साथ साथ स्वर्ग की बातें भी याद आते। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनने से पहला खुशी का पारा चढ़ता है, दूसरा बाबा का याद आती है और तीसरा स्वर्ग का वर्षा याद आता है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन क्या करते रहो, रात दिन माताएं क्या करो, माताएं बताओ, रात दिन बाबा बाबा करते रहो। माताओं को देखते हैं चलते फिरते बाबा बाबा करते रहेंगे, कुछ भी होगा बाबा बाबा करते रहते। तो बाबा कहते हैं रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो, तो आधा कल्प के आशिक हो, आधा कल्प के आशिक हो। इसलिए बाबा क्या कहते रात दिन बाबा बाबा करते रहो, तुम आधा कल्प के आशिक हो। भगत भगवान को याद करते हैं, भगत हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, बाबा की याद से क्या होना चाहिए, रोमांच मीन्स बहुत खुशी भी आ जाना चाहिए, तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही, बाबा कहते हैं अब सुनो, और देखो बाबा बच्चों को किस लिए बता रहे कि बच्चे निराश ना हो जाएं, निरुत्साहित ना हो जाएं। इसलिए बाबा कहती हैं, बाबा कहती हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते। बाबा को तूफान नहीं आते थे, जब बच्चे जाते थे बाबा के पास, बाबा क्या करें, मेरे पास ये तूफान आया, मेरे पास ये हुआ, मैं क्या करूं। बाबा कहते थे डरो नहीं, मेरे पास भी तो आते ही ना, हम कैसे उसको पार करते, तुम भी करो। तो बाबा कहती हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि मैं ही तो सबसे आगे हूँ। युद्ध के मैदान में क्या करते, कमांडर को पकड़ते, चीफ को पकड़ते, वो पकड़ा तो सेना ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगी। तो बाबा कहते मैं ही तो आगे हूँ, हमारे पास आते तब तो मैं समझाता हूँ, बच्चों के पास कितने आते होंगे। बाबा बच्चों की स्थिति को समझ आते थे, इसलिए बाबा कहते बाबा समझ सकते हैं कि बच्चों के पास कितने तूफान आते होंगे। मैं आते ही हैं, पहले मेरे पास आनी चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा। ये है फ्रंट में, हॉस्टल है तो माया भी। अब आप सोचो बॉक्सिंग होती है, एक पहलवान है और उससे लड़ने वाला छोटा बच्चा होगा, उसको देख करके पहलवान हंसेगा, कहेगा इससे मैं क्या लड़ूं, मैं इससे कोई बॉक्सिंग थोड़ी कर सकता हूँ, ये तो बच्चा है, वो खड़ा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सदा बाबा को याद करते रहो, माया कितनी भी पहलवान होके आए वो क्या करेगी, आएगी नहीं, हंस के चली जाएगी। तो बाबा कहते रुस्तम है, तो बाबा माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती। मलयुद्ध में भी सब एक जैसे नहीं होते, मलयुद्ध में बॉक्सिंग, मलयुद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होते। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते, ये क्या कोई बच्चे इतने समझदार बन जाते हैं कि जब बाबा के पास है तो हमारे पास हुआ तो क्या हो। बाबा ये क्यों बता रहे हैं कि बाबा के पास नहीं आते, बाबा तो वैसे बता रहे हैं कि बच्चों को उम्मीद दिलाने के लिए, निरुत्साहित न हो जाएं। तो बाबा कहते इस बात का भी ध्यान देना, कई बच्चे इतने होते हैं भोले भाले, समझते नहीं है कि तेरे अरे बाबा को भी तो आते थे ना, हमें आया तो क्या हुआ, फिर वो अपने कर्म इंद्रियों से काम करने लग जाते। तो बाबा कहते इस पे बहुत ध्यान देना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा कहते इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। कई कहते ज्ञान में आए ये क्यों होता है, अब ये दूसरी बात, बाबा सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे। कभी कभी कोई बीमार पड़ते ना, अपने ज्ञानी भी बोलेंगे बाहर वाले बीमार क्यों पड़े, तो ज्ञानी, अरे उनको पता नहीं कई जन्मों का हिसाब किताब है, जो हिसाब किताब संगम युग पर ही चुक चुक कर रहे हैं। बाबा हमेशा कहते थे और दादियां भी कहती थी, भले अपना हिसाब किताब आ रहा है इसको खुशी खुशी चुक चुक करते हैं, ताकि धर्मराजपुरी में हम जाकर के खुशी खुशी जाएंगे। तो इसलिए इस बात का भी सबको ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं, अरे तो बाबा कहते हैं फिर क्या बोलते हैं, ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, किसी को घाटा पड़ जाएगा ना, कहते हम ज्ञान में आए इसलिए घाटा पड़ गया। अरे तुम्हें वैसे घाटा पड़ता थोड़ी कहेंगे कि ज्ञान में आए, इसलिए कही है, कहती है ज्ञान में आए तो ये क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। तो बाबा कहते भल नहीं लो, नुकसान तो तुम्हारा ही होगा, भल बोलते हैं इससे ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प में नहीं आते। कई बार कई होते जोश में आते, अरे हम ज्ञान में आ गए ऐसे आगे क्यों आए, अरे छोड़ दो, फिर जाकर देखो, छोड़ के चले जाते, फिर दौड़ दौड़ के माफी मांग मांग करके आते। तो बाबा कहते सोच समझ करके पहले से ही बोलना है, सोच समझ करके पहले संकल्प करने हैं। तो बाबा कहते हैं संकल्प नहीं आते, अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना, इसी के सामने होते हुए भी पवित्र दृष्टि रहे, समझना है श्री बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के संतान होने से भाई बहन हो गए, फिर विकार कहाँ से आया, ब्राह्मण है ऊंच से ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम बहन भाई हैं, एक बाप के बच्चे तुम कुमार और कुमारी हो, अगर दोनों कुमार और कुमारी होकर नहीं रहते तो झगड़ा हो जाता है। बाबा देखते थे कई ऐसे युगल हैं, बीच बीच में अहंकार आ जाता है, तो छोटी छोटी बात को अहंकार आया, देह अभिमान आया, छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, ये झगड़ा हो जाता था। लेकिन बाबा कहते हैं, एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते। अब वो जुगल आपस में तनाव में है, झगड़े में है, तो उसका असर किस पे होता है, बांदेली माताओं पर आ जाता था। तो अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुष्प लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे कि पूतना है। ये भी यज्ञ में कई इतिहास हुए, कई कहानियां हुई है कि बस ऐसे ही, हम आपको बताए नाम नहीं लेते, एक भाई था बहुत सीधा, स्कूल का प्रिंसिपल, इतना ज्ञानी इतना योगी, उसकी स्त्री रोज ही लड़ती, लेकिन रोज शांत, कुछ भी हो शांत, तो आखिर जाकर के उसके ऊपर असर पड़ा कि ये इतना शांत है, मैं इसको इतना बोलती हूँ। तो बाबा कहते कई कई ऐसा भी पार्ट बजाते हैं। तो बाबा पुष्प लिखते, हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है, जवानों को तो बहुत मेहनत होगी होती होगी। अब बाबा भी देखो बच्चों को, यंग कुमार और कुमारियों को, बच्चों को उत्साह दिला रहे। बाबा कहते बाबा समझ सकते हैं कि जवानों को भी बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उनकी। बाबा उनकी महिमा भी करते, गंधर्व विवाह उनको उन्होंने किया जिनके सामने लौकिक परिवार से बहुत बंधन थे। तो बाबा ने एक दो को छुट्टी दी, और फिर दूसरे कई कच्चे थे, तो बोला बाबा हम भी ऐसे करें। बाबा कहते थे अपनी अवस्था तो पहले देखो। तो बाबा कहते हैं जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल उनकी है, उनका बहुत ऊंच पद हो सकता है। अब बताओ, बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया बाबा ने, उनका बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, गंधर्व विवाह कर लिया, और फिर अगर अवस्था ठीक नहीं है तो पद तो फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे कॉमन था। तो बाबा ने बताया, उनका ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए, तब जाकर के ऊंच पद पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को बाप, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसने बोला ही नहीं है, क्यों नहीं बोला, डबल विदेशी बोलो, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव, जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली को बाहर निकाल दो तो पानी से बाहर निकालेंगे, तड़पती है, तो बाबा कहते हैं जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये रहते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते, मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है, ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाये का अनुभव नहीं किया तब तक अति इंद्रिय सुख के झूलने में झूलने का तब तक अति इंद्रिय सुख के झूलने में झूलने का सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। उसके लिए क्या करना, बाबा कहते हैं जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अति इंद्रिय सुख के झूलने में झूलने का सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अव्यक्त इशारे तो हेडिंग है अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बनाओ। अपने को शरीर के बनने से न्यारा बनने के लिए अवतार समझो। अवतार हो इस समिति में रहे शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं ये करता हूँ इस संकल्प को भी समर्पित कर दो तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह के होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहन में बैठे रहेंगे। आज का सारे दिन का प्रोग्राम सुनाया जाएगा। दोस्त लाइव यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, आर टू डेज है।